ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 पाठ करके श्रवण करेंगे। नैषा परावरमति भवतो ननु सेत जन्तो जथा आत्मसृहिदो जगत तथापि संसेवया सुरतरुरिव ते प्रसादः सेवानरूपमुदयो न परावरतम् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु सेत् जन्तोर्यथात्मसृहिदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद सेवानरूपमुदयो न परावरतम्। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु सेत् जन्तोर्यथात्मसृहिदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद सेवानरूपमुदयो न परावरतम्। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु सेत् जन्तोर्यथात्मसृहिदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरो रिवते प्रसाद सेवान रूपमुदयो न परावरतम्। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु सेत् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु सेत् जन्तोर्यथात्मसृहिदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरो दिवते प्रसाद सेवान रूपमुदयो न परावरतम् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसृहृदो जगतस्तथापि वया सुरतरो दिवते प्रसाद सेवान रूपमुदयो न परावरतम। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। स न नेहे एसा इह परवर उच्च या निच निम्न का मति ही ऐसा भेदभाव भवतः आपका ननु निस्संदेह स्वेत हो सकता है जंतु हो सामान्य जीवों का जथा जिस प्रकार आत्मसृहृदः मित्र का जगतः समुचे संसारों का तथापि फिर भी मैत्री या मतभेद का ऐसा प्रदर्शन होता है। संसेवया भक्त द्वारा की गई सेवा की कोटि के अनुसार सुरतरोरिव वैकुंठ लोक में कल्प वृक्ष की भांति जो भक्तों को इच्छानुसार फल देने वाला है ते तुम्हारा प्रसाद बर या आशीर्वाद सेवानुरूपम भगवान के प्रति की गई सेवा की कोटि के अनुसार उदय अभिव्यक्ति न नहीं परावरत्वम छोटे बड़े का भेदभाव। हे भगवान, हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह। अच्छा, मैं पहले पढ़ लेते इसके बाद आप लोग सुने। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि आप में उच्च नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही आपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और उच्च नीच में भेदभाव नहीं बरतता। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भागवत गीता चौथा अध्याय एकादश नम श्लोक, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। में भगवान स्पष्ट कहते हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, जो जिस तरह मेरी शरण में आते हैं तदनुसार ही मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। नित्यदास प्रत्येक प्राणी कृष्ण का नित्यदास है। जीव अपने सेवा के अनुसार कृष्ण से स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्योंकि ये यह भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा है और यह वो है जिसे मैं नहीं चाहता। कृष्णा हर एक को अपनी शरण में आने की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परमेश्वर से जो संबंध बनता है वो उसके प्रति की गई सेवा तथा शरणागति के अनुसार में होता है। इस तरह सारे विश्व में जीव स्वयं ही अपने बड़े या छोटे पद का चुनाव करते हैं। यदि कोई भगवान को आदेश देना चाहता है कि भगवान उसे कुछ दे तो अपनी इच्छानुकूल आशीर्वाद प्राप्त करता है। यदि वो चाहता है कि स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करे तो उसे वो स्थान मिलता है, और यदि वो पृथ्वी पर ही शुकर के रूप में बना रहना चाहता है तो भगवान उसकी वो इच्छा पूर्ति भी करते हैं। अतएव मनुष्य का पद उसकी इच्छाओं से निश्चित होता है। हमारे जीवन में उच्च या निम्न पदों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, उसकी इसकी और अधिक व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। जानति देवव्रत देवान पितृन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या जानति मद्जाजी नहोपिमाम। कुछ लोग स्वर्गलोक भेजे जाना चाहते हैं, कुछ पितृलोक और कुछ इसी धरती पर बने रहना चाहते हैं। किंतु यदि कोई भगवत धाम लौट जाने का इच्छुक होता है तो उसे वहां भी भेज दिया जा सकता है। किसी भक्त विशेष की भोगों के अनुसार, मांगों के अनुसार भगवत कृपा से उसे फल प्राप्त होता है। भगवान यह सोचकर भेदभाव नहीं बरतते, यह व्यक्ति मेरे अनुकूल है और यह मेरे अनुकूल नहीं है, अपितु ये हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। वास्तव शास्त्र का आदेश है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो युदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। कोई चाहे निष्काम हो भक्त की स्थिति, या निष्काम या सकाम या मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण सिद्धि के लिए जिसकी चरम परिणति कृष्ण भावनामृत में होती है, सभी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। भगवान भागवत श्रीमद भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 10 नंबर श्लोक में ये श्लोक लिखे हैं। भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे रहने पर हर एक को अपने पद के अनुसार मनोवांछित फल मिलता है, चाहे वो भक्त हो, कर्मी हो या ज्ञानी हो। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य यही समाप्त है। नैषा परावर मतिर भवतो ननुष्यत जंतुर यथात्म सुहृदो जगतस तथापि संग सेवया सुरतरो रिवते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न परावरतम। तो श्रील प्रभुपा प्रहलाद महाराज जी की यहाँ स्तुति चल रहे कुछ दिनों से। तो प्रहलाद महाराज द्वादश महाजन में एक जन है, क्योंकि महाजन की वाणी ही हम सबको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि महाजनों जनगतो सपंथा महाजन की पद का ही अनुसरण करा सभी का कर्तव्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में यहाँ तो प्रहलाद महाराज जी का प्रवचन है और पूरी भागवत में महाजनों के प्रवचन है। प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक जो द्वादश महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वयासकी वयम, इनका ही प्रवचन मुख्यतः रूप से है। तो प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर भाव से पहले दैन्यता से जो शुरू किए स्तुति की, पहले दैन्य भाव से कहे कि हे प्रभु, जो ब्रह्मा आदि जो देवगण हैं, वो आपको स्तुति करके, बहुत प्रकार के तो स्तुति करके प्रसन्न नहीं कर पाते, और मैं तो असुर कुल मेरा जन्म है, मैं कैसे आपको स्तुति करके प्रसन्न करेंगे। सबसे पहले दैन्यता का उन्होंने प्रकाश किया। यही एक बड़ी विशेषता है कि दैन्यता भक्ति में सबसे पहले दैन्यता होनी चाहिए। किसी में भक्ति है, इससे एक ही मात्र पहचान है कि उसमें कितनी दैन्यता है। दैन्यता से यथार्थ भाव प्रकाशित होते हैं। अगर दैन्यता नहीं है तो उसमें गर्व, उसमें अहंकार, ये प्रकाश होता है। तो प्रहलाद महाराज पहले सिखा रहे, क्योंकि आचार्य जो है, महाजन है, कैसे स्तुति करना है, उन्होंने सिखा रहे हम सबको कि दैन्यता सबसे पहली। जैसे महाप्रभु कहे कि त्रिनादपि सुनिचे न तरोरी व सही सुन, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, सबसे पहले त्रिनादपि बने, जो कौन भगवान के नाम लेने से लेने में योग्य है, जो त्रिनादपि है। इसी प्रकार सभी भक्तों, हम सभी भक्तों को त्रिनादपि श्लोक से ही शुरुआत करना है। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज इसका संक्षेप में टीका के अनुसार जस्ट पहले क्या क्या हुआ इस श्लोक में, इस अध्याय मन स्तुति में। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज अपनी दैन्यता का प्रकाश किए, उसके बाद कि प्रहलाद महाराज जी अपने अयोग्यता का अयोग्यता अयोग्य समझे कि मैं अयोग्य हूँ, स्तुति करने योग्य नहीं हो, तो प्रहलाद महाराज सोचे कि नहीं, योग्यता की संभावना करते कि नहीं, प्रभु गुणों से रिझते नहीं, प्रभु भक्ति से रिझते हैं। जैसे गजेंद्र में कोई गुण नहीं था, किसी प्रकार योग्यता नहीं था, किंतु उन्होंने भक्ति से ही रिझे। तो फिर प्रहलाद महाराज सोचने लगे, प्रभु धनादि से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु धनादि से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तब प्रहलाद महाराज सोचने लगे कि आपने शुद्धिकरण के लिए मैं प्रभु का जस गायन करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म बहुत नीच कुल में है, असुर कुल में है, फिर भी पुए तो जे न ही पुमान अनुवर्णित न, मेरी अपनी पवित्रता के लिए, अपनी शुद्धिकरण के लिए मैं प्रभु का जस गायन करूंगा। तो फिर प्रभु प्रहलाद महाराज सोचने लगे, कहे कि प्रभु आपने लाभ से, आपने और से सब माने प्रभु परिपूर्ण है, प्रभु किसी की पूजा की जरूरत नहीं है, प्रभु अपने भक्तों की पूजा ग्रहण करते, किस लिए कि उनको प्रभु भक्तों की पूजा ग्रहण करते इसीलिए कि वो मुझे पूजा करके वो प्रसन्न होंगे, इसी प्रकार से प्रभु उनकी पूजा की स्वीकार करते, किंतु प्रभु की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहे कि ये प्रभु प्रहलाद महाराज कहे कि प्रभु आप भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार स्वीकार करते हैं कि आप भक्तों के सुख के लिए, भक्तों के सुख के लिए आप भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। फिर कहे कि हे प्रभु आप अपना क्रोध संवरण करिए, क्योंकि जो जिसको मारना था मर गया, आप जो असुर था हिरण्यकशिपु, जिस साधु को सताते थे, आज साधु की प्रसन्नता के लिए आप उनको वध कर दिए, इसलिए आप क्रोध करने की जरूरत नहीं, आप क्रोध को संवरण करिए, और आपका ये जो क्रोध है, आपका जो इस रूप है, ये भक्त लोग आप इस रूप का स्मरण करके वो भी निर्भय हो जाएंगे। हैं रूपम निशिंग विभवाय जना स्मरन्ते, सभी जन आपका स्मरण करेंगे। तो फिर कहे कि प्रभु, तो प्रहलाद भगवान कहे कि प्रहलाद साल में अपना क्रोध का संवरण कर ले, आप डर रहे हैं कि सभी लोग डर रहे, कहे प्रहलाद कहे कि नहीं प्रभु मुझे डर नहीं है, इसी रूप में इस आप जो इसका जो सुंदर रूप है, भयावह रूप है, इससे मुझे कोई डर नहीं है। हे प्रभु मुझे इस बात की डर है जो संसार में लोग पीछे जा रहे, संसार चक्र में पिसाई हो रहे, जैसे मेरा असुर कुल में जन्म है, संसार चक्र के जो आवागमन है, इसी में मैं डर रहा हूं, हे प्रभु मुझे आपके शरण में ले लीजिए, आपके चरण आश्रय दीजिए। फिर कहे कि यहाँ लास्ट में जो श्लोक कहना था मुझे कि प्रहलाद जी कहेंगे कि अच्छा सो अयम प्रिय सुहृद परदेवताया, इस श्लोक आएगा इसके बीच में कि सो अयम प्रिय सुहृद परदेवताया लीला कथास्तव निसिंह विरिंच गीता। हाँ, सो अयम ओही में, सो अयम ने ओही में नारद मुनि का भृत्त हो, सेवक हो और प्रभु आपका भक्त हो, मेरा उद्धार में कोई शंका है, कोई संदेह है, निश्चित रूप से मेरा उद्धार हो जाएगा। कैसे उद्धार होगा? हे प्रभु, मैं परंपरा से जो प्राप्त जो गीत जो आप भगवदीय ज्ञान उसको मैं गायन करूंगा, संतों के संग सत्संग करूंगा और सत्संग करूंगा, परंपरा से जो आपकी जो लीला कथा है उसी का गायन करके मैं इस संसार जो सागर है पार कर जाऊंगा। यहाँ कहने का उद्देश्य ये है कि जो जिस परंपरा में है उसी में बहुत विश्वास रखे कि मुझे यही पार करने वाला है। अगर एक परंपरा में रहकर फिर दूसरी परंपरा में चले जाए उसमें विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझे, जो गौड़ीय परंपरा जो है ये बहुत सुंदर परंपरा है, जो महाप्रभु द्वारा जो प्रदत्त जो धाराएं है, जैसे हम सब श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों से दीक्षित है, महाप्रभु शिक्षा शिक्षित है, इसी में दृढ़ निष्ठा रखे, अपना ही जो गौड़ीय परंपरा जो है इसी का ही संग करें। अगर हम किसी और परंपरा की बातें श्रवण करते रहे तो इसमें निष्ठा की कमी आ जाएगी। कोई कहे कि सुखिया श्रेष्ठ है, कोई कहे परकिया श्रेष्ठ है, जैसे महाप्रभु धारा में परकिया श्रेष्ठ है, परकिया रस उज्जवल रस इसको यह श्रेष्ठ माना गया। कोई कहते नहीं नहीं, परकिया में कोई दम नहीं है, सुखिया में ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। परकिया इसलिए श्रेष्ठ है कि महाप्रभु ने इस उज्जवल रस को प्रदान किए। तो जैसे इसी धारा में कैसे सेवा होती है, परंपरा से कैसे जो हम कुछ भोग अर्पण करें गुरु से करेंगे, गुरु उनके गुरु को अर्पण करेंगे, इसी भाव से हमारी सेवा ठाकुर जी के तक पहुंचेंगे, यही सेवा की परंपरा है। और ठाकुर जी की कृपा कैसे आएगा? ठीक परंपरा से आएगा, डायरेक्ट आपको कृपा नहीं करेंगे ठाकुर जी, डायरेक्ट नहीं कहेंगे आप हमारे चरण आप अपना सिर पर हमें हाथ रखता हूँ, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। ललिता से कहेंगे, जैसे एक बार कहानी कथा सुनाता हूँ, एक बार राधा जी जल विहार कर रहे, ठाकुर सखियों के साथ जल विहार कर रहे, तो उनका एक जो नौत है एक छोटा सा नौत पानी में गिर गया। तो जब श्रृंगार करने ललिता अभिषेक श्रृंगार करने लगे, कपड़ा पहनने लगे, देखे श्री जी के राधा जी के नौत नहीं है, तो कहाँ है कहाँ है, इतने पानी इतना कहाँ गाय खो गया, खोजो खोजो सब सखियाँ खोजने लगी, किसी को मिला नहीं। फिर श्रीनिवास आचार्य जो मंजरी स्वरूप में है वो उसको मिला, उसको मिला। पहले राधा ललिता जी रूप गोस्वामी रूप मंजरी से कहेंगे आप देखिए एक छोटा सा नौत यहाँ खो गया, इसको आप ढूंढ के लाइए। फिर वो आप उनके परंपरा से कहेंगे कि आप इसको देखिए, फिर वो आप उनके परंपरा से कहेंगे कोई मिलते मिले जाए तो ढूंढ कर लाइए। फिर इस प्रकार से परंपरा से तो फिर श्रीनिवास आचार्य को मिला, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जब मिला फिर वो जो नाथ मिला वो नाथ को अपने गुरु को प्रदान किए, डायरेक्ट श्री जी को दे नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं दे सकते, उस ठीक उसी को दिया। फिर वो लोकनाथ गोस्वामी दिया, लोकनाथ गोस्वामी फिर दिया रूप गोस्वामी, इस प्रकार से फिर ललिता, इस प्रकार से सेवा जाती है और कृपा भी उसी प्रकार से आती है, डायरेक्ट नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि परंपरा के प्रति बहुत अधिक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास के बिना सेवा मतलब भ्रम में पड़ जाएंगे। हमारी परंपरा कई ऐसे ऐसे प्रवचन होता है कि आप सोचेंगे कि यार हमारे में कमजोरी है यही ठीक है, ऐसे कभी कभी प्रवचन में ऐसी बातें आ जाती है अपने परंपरा में निष्ठा खो बैठते, निष्ठा छूट जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सावधानी से अगर सत्संग करें तो गौड़िया गौड़िया का ही सत्संग करें, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका धारा ठीक बनी रहेगी। इसलिए कहे प्रहलाद महाराज कहे, लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंच गीता, मैंने भगवान कृष्ण ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी नारद को जो ज्ञान दिया, नारद से मैं जो ज्ञान प्राप्त किया उसी को मैं गायन करूंगा। हाँ, तो इसलिए और सत्संग करूंगा महान महान भक्तों के साथ बैठ के आपकी लीला कथा सेवन करूंगा, तो इसी से हम संसार चक्रों से पार हो जाऊंगा। फिर कहे तो फिर प्रहलाद महाराज कहेंगे कि हे प्रभु, आप ही सबके रक्षक है, पिता माता बालक का रक्षा करने वाला नहीं है। हाँ, पिता माता बालक को पालन पोषण करते हैं किंतु प्रकृत रक्षक पिता माता नहीं है, सब प्रकृत रक्षक आप ही है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भगवान की श्रेष्ठत्व को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कहेंगे, हे प्रहलाद, तुम एक काम करो, हाँ तुम सभी लोकपालों के जो भोग है तुम ले लो, तुम भोग भोगो, हाँ लोकपालों के राजा के भोग भोगो, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। भगवान क्या कहे, प्रहलाद तुम भोग ले, क्योंकि तुम महान भक्त हो, तुम हमारे भक्त हो, तुम्हारे भोग में क्या कमी है। हाँ, तुमको सारे प्रकार के भोग ऐश्वर्य में देने में दे दूंगा, आप संसार से उद्विग्न मत हो, भोग ले लो। फिर प्रहलाद कहे कि प्रभु, इस 3 श्लोक से इसका वर्णन करेंगे, भोग की कितनी महिमा है, हैं भोग कितनी खतरनाक है। प्रहलाद जी इसी से सब सबको बचने के लिए कहेंगे कि इसी से बचिए, जाकर भगवान से भक्ति में जुड़ना है, भक्ति प्राप्त करना है। 3 श्लोकों से 22, 23, 24 में कि हे विभो, कि मनुष्य जिन माने जिनकी पुण्य के द्वारा कर्म में माने सभी लोग पुण्य करते, पुण्य के अनुसार सब भोग प्राप्त करते, और वो भोग के कारण वो कहा जाते सर्व लोग जाते, किंतु मैंने देखा, प्रहलाद महाराज कहा कह रहे कि मैंने देखा अपने अपने पिता के कोप से, क्रोध से ये सब देवता का नाश हो गया। हाँ, ये देवता बहुत प्रयास करके कहाँ गए, स्वर्ग लोग गए, मनुष्य लोग बहुत पुण्य करते, बहुत कुछ जाग जुग करते, अनुष्ठान करते, इसके प्रताप से कहा जाते देव लोग जाते, और मैंने खुद देखा अपने पिता के प्रताप से, कोप के प्रताप से सब देवता ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, और वही हमारे पिता इतना शक्तिशाली होने पर भी आज आपके द्वारा स्वयं नाश हो गया, इसलिए प्रभु आप मुझे इस भोग से मुझे लालच मत दिखाइए, ये भोग में मत फंसाइए, मुझे भोग की कोई जरूरत नहीं है। इस कारण जीव के आयु, लक्ष्मी और वैभव को जानने वाला मैं इंद्र से उपभोग्य ब्रह्मादि के भोग पर्यंत भी नहीं चाहता हूँ। प्रहलाद जी भोग को बिल्कुल ठुकरा रहे, भगवान देने के लिए तैयार ठीक कर रहे, प्रहलाद जी बोले प्रभु जी मैं इसको नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं अनिमादि सिद्धि रूप भी नहीं चाहता हूँ, आप अगर देना चाहे तो अपने सेवकों का सेवक बना दीजिए, कितनी बड़ी मांग, भक्तों का भक्त, महाप्रभु गोपी भर्त पद कमलयोर दास दासानु दास, यही प्रार्थना। जैसे हम लोग जब अर्चन करते ठाकुर जी के, पहले इसी श्लोक का स्मरण किया जाता है दैन भाव से, हे प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं अज्ञान अंधकार से पड़ा हुआ था, आज गुरु कृपा से आपकी सेवा करने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ, आप मेरा सेवा स्वीकार करें, इसको पहले कहना पड़ता है। हाँ, कि अपनी दयनता का प्रकट करना पड़ता है, प्रभु मुझे कोई योग्यता नहीं है, आप अपनी कृपा से मेरी सेवा स्वीकार करें। तो फिर कहे ये भोग सुनने में बहुत प्रिय लगता है, भोग सुनने में बहुत प्रिय, देखना बोले ना दिल्ली का लाड्डू जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी। तो इसी प्रकार भोग सुनने बहुत मनोरम लगता है, अरे भोग अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भोजन, अच्छा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भोग है ये बहुत अच्छा लगता है, किंतु इसमें कोई सुख नहीं है, किसी प्रकार के सुख नहीं है, ये शुद्ध केवल दुख देने वाला है। ये शरीर जो है ये रोग का मंदिर है, ये क्या भोग भोगेगा? हे प्रभु मुझे भोग की जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे कि तो वैराग्य क्यों नहीं कर लेते? अगर भोग की जरूरत नहीं है तो वैराग्य कर लो। वैराग्य है तो वैराग्य कैसे प्राप्त हो? प्रहलाद जी कहे कि प्रभु वैराग्य की जो भोग, अगर भोग नहीं है चाहिए तो क्या चाहिए? वैराग्य ले लो। तो प्रभु वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? ना, आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। वैराग्य ऐसे नहीं आता है, जब तक आपकी कृपा ना हो। जैसे लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, जो आपकी प्रसाद प्राप्त नहीं कर पाए वो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। पहले श्लोक में बताया ना कि हे प्रभु जो कृपा प्रसाद लक्ष्मी जी की प्राप्त नहीं हुई, जो कृपा प्रसाद ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, जो कृपा प्रसाद शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। पहले श्लोक में ये श्लोक कहा, काहम रज प्रभाव ईस तमोधिकेस्मिन जात सूर्य तरकुले कतवानुकंपा न ब्रह्मनो, ब्रह्मा को वो सुख नहीं मिला, ओ न तो भवस्य शिव को भी वो प्रसाद नहीं मिला, न वही रमाया लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। जन्मेर पित शिरसि पद्म कर प्रसाद, जो पद्म कर जो लक्ष्मी हाथ, जो लक्ष्मी जो पद्म कर मतलब जो जो पद्म कर मतलब जो हाथ में लक्ष्मी की जो मैंने अत्यंत सौभाग्य का जो प्रसाद है वो मुझे प्राप्त हुआ। जन्मेर पिता मेरे मेरे सिर पर अर्पित हुआ। तो फिर प्रभुपाद जी आज के श्लोक में लिखते हैं, तो भोग में एक छोटा सा कथा सुनाते हैं इसी के ऊपर, जो भोग में कैसे मनुष्य को जड़ बना देते हैं। एक बार एक एक राजमहल, एक राजमहल, राजमहल में एक बहुत सुंदरी उस लड़की उसी में मैंने सोई हुई थी, मैंने उनकी व्यवस्था थी और पूरा साम्राज्य बहुत पूरा एकदम सोने हीरे का साम्राज्य है। तो वहाँ जो गेट पहाड़ा गेट है, जो दरवाजा है, वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया कोई भी जा सकते देखने के लिए, किंतु जाने के बाद एक शर्त है, जो जाते वो फिर लौट कर आते नहीं, जो जाते और लौट कर आते नहीं। तो ऐसे प्रकार किंतु देखने में बाहर से बहुत चमक धमक लग रहा है, सबको देखने की इच्छा है, भाई क्या है अंदर, कौतूहल होता है, भाई एक बार जाके देख कर आते। तो किंतु बुढ़िया एक शर्त लगा देती है, आप ध्यान सुन लीजिए, उसके बाद आप जाइए। वहां से आए तक जितना लोग गए कोई लौट कर आया नहीं। अगर आपको जाने, अगर आप वहां से चले गए और वो जो लड़कियां सोई हुई है उसको जगा दे तो पूरा आपका साम्राज्य मिल जाएगा, पूरा साम्राज्य का मालिक आप बन जाएंगे। किंतु ये भी एक शर्त है, वहां जो गया फिर लौट कर आया नहीं। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो एक राजकुमार आया, आखिरी में एक राजकुमार आएंगे। राजकुमार बोले मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, अब मैं इसको जगाऊंगा। तो जो लोग जाते थे, क्योंकि सब हीरे का ढेर है, मोहर का ढेर है, जो स्पर्श करते लोग, साधारण लोग यही इच्छा है थोड़ा देख ले, स्पर्श कर ले, और जैसे स्पर्श करते वह जड़ बन जाते। वहां का यही जादूगर था, वहां जादूगर से बनाया। जादूगरी का ऐसे नियम है, उस भोगों में जो स्पर्श करेगा वो वही पे रह जाएगा, वहां से वो और आएगा नहीं। इसलिए टच नहीं करना, देख के वहां से चल दो तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो लोग गया उसको, साधारण लोग ऐसे है कि भाई इतना सुंदर, थोड़ा आनंद ले लो यहाँ का, हाँ ऐसे है ना, जगत का आनंद ले लो, थोड़ा देख लो, घूम लो, थोड़ा स्पर्श कर लो, थोड़ा खा लो, छो लो, ऐसे ही सब लोग जैसे टच किया उसी में वो जड़ बन गया। तो फिर जैसे राजकुमार गए, राजकुमार कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भोग सागर से आए, उनका क्या सब देखना, ना धन संपत्ति देखने की इच्छा है, ना कुछ छोने की, ना खाने की, ना पीने की, वो सीधा चल दिया। जब लड़की को जगाया लड़की कहे कि आपको किसी ने रोका नहीं, आए तो कि कोई नहीं आ पाया, आप कैसे आ गया? बोले मैं किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं किसी तरफ देखा भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। और जो लोग, क्योंकि बाद में वो कहा कि ये तो जादूगर का खेल है, ये तो जादूगर का बना हुआ है, ये कोई भी जो भी आते यहाँ जड़ बन जाते हैं, तो आप जब आ गए तो आप महान हैं, आप मुझे स्वीकार करिए। कहने का उद्देश्य यही है कि भोग मनुष्य को जड़ बना देते हैं। ये मठ मंदिर है, मठ मंदिर में भोग का है, इसमें ये नहीं कि यहाँ भोग से मुक्त है, तो यहाँ सावधानी से इसी से दूर रहकर आपको, आपका लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमल तक पहुंचना है। प्रहलाद महाराज वही सिखा रहे, हे प्रभु ये भोगों में कोई दम नहीं है, आपका चरण कमल का आश्रय दीजिए, आपके सेवक का सेवक बनाइए। प्रहलाद महाराज का यही भाव है पहले श्लोक में, काहम रज प्रभव, मैं रज प्रभव माने हम ये रजोगुण, माने रजोगुण में मेरा जन्म है, तमोधिकेशमिन तमो गुण से युक्त है, जात सूर्य तर कुले, सूर्य तर कुल मैंने सुर इतर असुर कुले मेरा जन्म है, हैं कौतवान कंपा, आपकी अनुकंपा देखिए, कहा मेरा जन्म असुर कुल में और कहा आपकी अनुकंपा, हाँ दोनों का अंतर क्या है? हे प्रभु जो प्रसाद शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ वो प्रसाद मुझे प्राप्त हो। फिर आज का श्लोक में कह रहे कि हे प्रभु आप में कोई नीच उच्च नीच का भेद नहीं है, आप सब पर समान कृपा करते, ऐसे नहीं कि आप मेरे पर वैसे ज्यादा कृपा किया और किसी पर नहीं किया, ऐसे नहीं है, आप सब पर समान कृपा करते। न परावरतम नैषा परावरमतिर भवतो ननुष्यत जंतुर यथात्मश्रहिदो, आत्मश्रहिद आप आत्मश्रहिद है, आत्मश्रहिद मतलब आप अंतर्जामी है, आत्मा का अर्थ अंतर्जामी, आश्रहिद मतलब हितकारी, जंतुर यथात्मश्रहिदो जगतस तथापि संग सेवया सुरतरो रिव, आप सुरतरो रिव मतलब आप कल्प वृक्ष के समान है, आप जो भी आते आप उसके मन चाहे जो भी इच्छा है आप पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष ये नहीं देखते गरीब है ये अमीर है, ये मांगेगा इसको देंगे इसको नहीं देंगे, ऐसे विचार नहीं करते। इसी प्रकार आपके पास जो आते हैं आप उसको उसी प्रकार से उसकी सेवा करते दे देते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जे यथाम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, जे यथाम जिस जिस प्रकार से जिस भाव से सेवा करना चाहते हैं, कोई पिता कोई भगवान को पिता माता बनाना चाहते भगवान पिता माता बन जाते, कोई भगवान को पुत्र बनाना चाहते भगवान पुत्र बन जाते, कोई भगवान को कुछ भी बना ले भगवान बनने के लिए तैयार है, अपने भाव के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में यही लिख रहे हैं कि जे यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम, जो जिस भाव से सेवा करते, जैसे देवता लोग पूजा करते वो देव लोग जाते, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जानती देवव्रत देवान, देवता लोग कहाँ जाते देव लोग जाते, जानती देवव्रत देवान पितृन जानती पितृव्रता, पितृन जानती पितर लोग जाते पितृपुरुष लोग हैं पितर की सेवा करके, पितृन जानती पितृव्रता जो पितृव्रता है वो पितृन जानती, और भूतानि जानती भूतेज्ञा जो भूत प्रेतों की सेवा करते भूत लोग जाते, और जो मेरी सेवा करते वो मेरे पास आते। तो सबसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखने का तात्पर्य प्रभुपाद जी यही है, प्रहलाद महाराज जी कहने का भाव यही है कि हम सबको भक्ति भाव का स्वीकार करना है, हमको किसी प्रकार से भोगों में फंसना नहीं, यहाँ बहुत प्रलोभन है, हैं किसी प्रकार से ये भक्ति से थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, जब तक सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें से अपने जो हम जो सेवा कर रहे हैं उसके परिणाम पर ध्यान रखें, क्या परिणाम है इसका, जो मैं कर रहे जो बातें कर रहे हैं जो सुन रहे सब पर ध्यान से मैंने विचार कर इसका परिणाम क्या होगा। हाँ परिणाम पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हाँ अगर परिणाम पर ध्यान नहीं देंगे तो आप विनाश के कारण बन सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते, जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूताने जानती भूते जा, जानती मत जाजी न हो पिमाम। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक गीता का एक श्लोक है कि हे अर्जुन, तुम मेरा भक्त हो, तुम मेरा सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ज्ञान प्रदान करूंगा। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए भक्त, इसलिए भगवान अर्जुन को चुना कि अर्जुन भक्त है, सखा है, इसी को मैं भगवद्गीता का ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवद्गीता ज्ञान जो है, जैसे जैसे सूर्य, सूर्य में कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रोशनी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगाते कि भाई तुम हमारा इतना रोशनी खर्चा किया तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। भगवान इस प्रकार के टैक्स नहीं भरते, इसलिए भगवान में सूर्य में इतनी उज्ज्वलता है, इतने उत्कर्ष है। इसी प्रकार जो निष्काम भाव से सेवा करते उसमें भी एक उज्ज्वलता दिखाई पड़ेगी। जो निष्काम भाव से किसी प्रकार की स्वार्थ रहित होकर सेवा करे तो उसमें एक प्रकाश दिखाई पड़ेगा। शिला प्रभुपाद सारा विश्व में निस्वार्थ भाव से प्रचार किए, आज शिला प्रभुपाद जी का सारा विश्व में मंगल आरती हो रही है, उनकी भगवान की तरह सेवा पूजा हो रही है, क्योंकि शिला प्रभुपाद निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सारा संसार की सेवा किए, भगवान नाम की प्रचार किए। भगवान नाम प्रचार सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि अगर भगवान नाम का सेवन करते रहेंगे जो हमारे अंदर जो आसुरिक भाव है ये धीरे धीरे से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रभु का नाम, शिल प्रभुपाल आज सारा संसार, जहाँ पूरा दुनिया में जहाँ के लोग सब बिल्कुल आसुर जाति के थे, बिल्कुल हिंस्र परायण थे, आज शिल प्रभुपाद जी कृपा से सब आज हरिनाम के प्रभाव से आज महान भक्त है, महान भक्त हो गए। इसका कारण एकमात्र हरिनाम। इस जुगल जो नाम है, ये हरिनाम जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते, ये गोलोक से ध्वनित हुआ। श्रीमती राधा रानी कृष्ण का नाम लेते, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, बार बार कृष्ण बोलते। राधा जी क्या बोलते? हे कृष्ण। कृष्ण क्या कहते? हे राधे, हे राधे, हे राधे। ऐसे हरे कृष्ण दोनों का ध्वनि है। हरे कृष्ण, एक बार हरे बोले वो कृष्ण बोले, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ये हरा जो है, राधा रानी का एक नाम है हरा, राधा रानी का और एक नाम है हरा, हरा संबोधन में हरे आता है। और हे राम, यह राम जो है ये भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। रमु क्रीड़ा धातु से राम बनता है। हाँ, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, ऐसे। किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरे क्या राधा नाम को डायरेक्ट ना लेकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। ये नाम के प्रति अगर कोई निष्ठा करके, अगर इसी में बहुत निष्ठा सहकर नाम स्मरण करे, निश्चित रूप से इसका बहुत 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 माने प्रेम प्राप्ति करा देंगे नाम। किंतु निष्ठा होनी चाहिए, और निष्ठा तभी होगा जब अपने परंपरा से आपने ऐसे में देख सुना, कुछ ऐसे भक्त है जो गौड़ी परंपरा के ना समझने का कारण बाहर चले गए। तो कहने का उद्देश्य है कि आत्मविश्वास रखे कि नहीं, हमारी जो परंपरा है सही परंपरा है, ये श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दी गई परंपरा है, इसमें कोई कमी नहीं है, हमको इसको हमारे अंदर में इसके प्रति पूर्ण विश्वास स्थापित करना है। निश्चित रूप से महाप्रभु के से हर क्षण प्रार्थना करना है, हे प्रभु आपके नाम में मेरी रुचि हो, आप कृपा करें जैसे जिह्वा पे नाम निरंतर स्फुरण होते रहे। इसलिए एक छोटी छोटी प्रार्थना, प्रभु समय व्यर्थ ना जाए, मेरे प्रयास से संभव नहीं है। इसलिए आचार्य लोग गाते, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, তোমার কৃপায় আছি নির্ভর করিয়া। হে প্রভু, আপনি কৃপা কি জরুরত হে, আপনি বল প্রয়াস সে হোনে বালা নেই হে। ইসলিয়ে ভগবান সে সামনে জবি সামনে রহেঙ্গে কৃপা কি প্রার্থনা করে, হে প্রভু কৃপা প্রদান করে। হ্যাঁ, দৈনতা কি ভিক্ষা মাঙ্গে, হে প্রভু দৈনতা দিজিয়ে। হ্যাঁ, দৈনতা প্রভু কি তরফ সে আয়েগা, আপনি তরফ সে নেই আয়েগা, আপনি প্রয়াস আর প্রভু কি কৃপা দোনো মিলকর সব বনেগা। তো ইসলিয়ে আর ইস স্তুতি রোজ পাঠ করতে রে, স্তুতি যো হ্যাঁ বহু দিব্য স্তুতি হ্যাঁ, প্রহ্লাদ জি কে একদম হৃদয় কি স্তুতি হ্যাঁ, আর সব সাধারণ যে জন হ্যাঁ ভোগ সে ভক্তি তক লে যাওয়ার কে লিয়ে স্তুতি হ্যাঁ, হৃদয় মে যে ভোগ ছিপা হওয়া হিসো উখাড় কে ফেঁকনে কাজ স্তুতি হ্যাঁ। ব্রহ্মাদয় সুরগণা মুনয়থ সিদ্ধা সত্যৈকতান মতয়ো বচসাম প্রবাহয়ে নারাধিতুম পুরগণৈরধুনা পিপিপ্র কিম তষ্টমর্হতি সমে হরিরুগ্রজাতে মন্যে ধনাভিজন রূপ তপঃ শ্রুতৌজ তেজ প্রভাব বল পৌরুষ বুদ্ধিযোগ আরাধনায় ভবন্তি পরস্য পুংস ভক্তা তুতোষ ভগবান গজযূথ পায়। এসে রোজ দু তিন মহিনা পাঠ করতে রে, পুরা ইয়াদ হয়ে যায়গা। আর পাঠ করলে বাদ আপ কিছু গাড়ি চলা রে, কই একান্ত মে যা রে, কই রাস্তা মে চল রে, ইসো গাতে হুয়ে চলিয়ে কতনা আনন্দ দেখি। সংস্কৃত ভাষা মে এক বিশেষ আনন্দ ভি হ্যাঁ কহনে মে মে আপনি গুরুজন সে দেখা পুরা ভাগবত কে জিতনি স্তুতিয়া হ্যাঁ পুরি ইয়াদ হ্যাঁ, গাতে গাতে হুয়ে চলতে। এসি প্রকার কুন্তী স্তুতি হ্যাঁ, প্রহ্লাদ স্তুতি হ্যাঁ, মহাপুরুষ শিক্ষা হ্যাঁ, ইসো ইয়াদ করে ইতনা কি রগ রগ মে ইসো বোলনে লাগে। হ্যাঁ, কই ভি স্তুতি, প্রহ্লাদ স্তুতি হো, ধ্রুব স্তুতি হো, কুন্তী স্তুতি হো, গজেন্দ্র কি স্তুতি হো, কুছ তো ইয়াদ করে জীবনভর জীবন। একচুয়ালি উহা যানে কে লিয়ে ভগবত ধাম যানে কে লিয়ে এই টাকা পয়সা ভোগ কুছ সাথ মে নেই যায়গা, কে যায়গা ভক্তি রূপ যো ধন হই যায়গা, এ সব এই ছোড় কে জানা পড়েগা। হ্যাঁ, কিন্তু নাম ধন ইহা কা কারেন্সি উহা নেই চলতা হ্যাঁ, উহা কা কারেন্সি ক্যা হরিনাম। হ্যাঁ, ইহা কা কারেন্সি ভগবত ধাম মে নেই চলেন, ভাই এতনা করোড় দে দেন, আপ মুঝে এক এসি রুম দে দিজিয়ে, নেই মিলেগা। তো ইসলিয়ে একবার পরম পূজ্য রাধা গোবিন্দ গোস্বামী এক বহু সুন্দর কাহিনি শোনা থা, মে এক দু মিনিট মে শোনাতা। একবার মহারাজ জি কহে কি একবার রাজ্য মে এসে নিয়ম থা কি কই ভি ব্যক্তি জব আখরি সময় আয়েগা উসকো জঙ্গল মে ভেজ দিয়া যায়গা, ওর রাজ কর্মচারী কে কহেঙ্গে রাজন আপকা সময় হো গিয়া, আপ জঙ্গল মে ছোড় দেন, জঙ্গল মে সব লোক সব জন্তু জানোয়ার উসকো নোচ নোচ করে খাকর সমাপ্ত কর দেন। তো ফির এসি তরহ উসকো পরম্পরা হ্যায় জো ভি রাজা বনেগা উসকো আখরি সময় ইস প্রকার সে জঙ্গল মে জানা পড়েগা, সব গির জো হ্যায় জন্তু জানোয়ার সব উসকো খা যায়গা। ফির একবার কে এক রাজা মন্ত্রীয় সে কাহা কি ভাই মুঝে তো ভি জানা হ্যাঁ, কল আ গিয়া আবি সময় কম হ্যাঁ, তো এক কাম করে আমার পাশে আবি সময় হ্যাঁ, আপ পুরো যাহা জানা হ্যাঁ ওহা পুরো সাফ কর দিয়ে, জঙ্গল যাহা হ্যাঁ আচ্ছা মকান বানা দিজিয়ে, আচ্ছা সে রহনে কা ব্যবস্থা কর দিজিয়ে। তো ঠিক হ্যাঁ, ওহা ইসি প্রকার সে তৈয়ার হো গিয়া। ফির জব জানে কা সময় হুয়া তো ফির জব লে কর গিয়া, ফির আপনা মহল বন গিয়া, কই ভয় নেই হ্যাঁ, আপনা মহল মে রহনে লাগে। ইসি প্রকার উহা যানে কে লিয়ে এই সে তৈয়ারি করি পড়ে গিয়ে, হ্যাঁ উহা যানে কে লিয়ে এই সব কুছ তৈয়ারি করকে জানা পড়ে গা, কি মুঝে কই ডর না লাগে, নাই তো আখরি সময় বহুত ভয়াবনা অবস্থা হ্যাঁ, আপকো ইতনি দাসেগা ইতনি, কিন্তু আগে হরিনাম কাজ সাধ রহে, ভক্ত সঙ্গ কাজ সাধ রহে, প্রভু কাজ স্মরণ রহে, কিসি কোমা মে রাখনে পে আপকো কই তকলিফ নেই হ্যাঁ, কিসি হালত মে রহে, আর আখরি সময় প্রভু কা নাম জিহা পর নহি নিকলে, মে মহান সন্ত কে মুখ সে শোনা কি ভগবান উস সময় ইসকো ইয়াদ করতে, ঠাকুরজি জিস সময় নাম নেই নিকাল রে কিন্তু প্রভু উস সময় ইসকো ইয়াদ করেঙ্গে, তো ইসলিয়ে কই ডরনে কি কই আবশ্যকতা নেই। আজ আমার জিতনা প্রয়াস হ্যাঁ, শারীরিক জিতনি শক্তি হ্যাঁ, মে প্রভু কা নাম ছোড়ুঙ্গা নেই, সৎসঙ্গ কবি ছোড়ুঙ্গা নেই, ভোগ সে ফাঁসুঙ্গা নেই, আর परंपरागत जो शिक्षा है इसका ग्रहण करते रहूंगा, इस पर आत्मविश्वास रखूंगा, निश्चित रूप से उसकी कोई संदेह नहीं आत्म कल्याण में। तो इसलिए इसी प्रकार यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं कभी कभी हमारे अल्टार में कहे थे कि यहाँ जो सेवा चल रही है यही सेवा वहां मिलेगा, यहाँ में निष्ठा हो जाए तो यही सेवा, यहाँ कोई बर्तन सेवा कर रहे, कोई फूलमाला सेवा कर रहे, कोई कुछ झाड़ू मार रहे, तो यही सेवा यहाँ ही परफेक्ट हो जाए, यही सेवा उसको वही मिलेगा। यहाँ परफेक्ट करने के लिए कि हाँ यही मुझे करना है, तो यही तैयारी कर ले। जितना समय है, 2-4 साल 10 साल आयु सब सीमित है, सब गिन गुनती है, आपके एक एक क्षण काट रहे हैं। किंतु भागवत में ये भी श्लोक लिखा है, आयुर हरति वैपुंसम उद्दन अस्तम चजनसो तस्सरित जत क्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्ताया। जिस क्षण आपका उत्तम श्लोक वार्ता से व्यतीत होगा उस क्षण का आपका नाश नहीं होगा। उत्तम श्लोक का जस गाने से उस क्षण का नाश नहीं होगा। इसलिए भोग से बचे और भक्ति में दृढ़ हो जाए। बहुत प्रलोभन रहेगा, किसी प्रकार से नाश में आसक्त हो, एकमात्र ध्येय रहेगा प्रभु की श्री चरण कमल। श्रील प्रभुपाद की।